नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, मेरियन वुल्फ की पुस्तक रीडर। कम होम द रीडिंग ब्रेन इन अ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल युग में पढ़ने की बदलती आदतों पर केंद्रित एक विचार प्रधान गैर कथा कृति है। संज्ञानात्मक तंत्रिका वैज्ञानिक और साक्षरता शोधकर्ता वुल्फ इसे पाठकों को लिखे गए पत्रों के रूप में प्रस्तुत करती है। उनका मुख्य प्रश्न सरल लेकिन गहरा है, क्या तेज खंडित और लगातार विचलित करने वाले स्क्रीन अनुभव हमारे मस्तिष्क की उस क्षमता को बदल रहे हैं जिससे हम कठिन पाठ को धैर्यपूर्वक समझते, उसका मूल्यांकन करते और दूसरे मनुष्यों के अनुभवों से जुड़ते हैं। पुस्तक तकनीक विरोधी घोषणा नहीं है। वुल्फ मानती है कि डिजिटल माध्यम अपरिहार्य हैं और उपयोगी भी हो सकते हैं। उनका आग्रह यह है कि बच्चों और वयस्कों में ऐसा द्विभाषी पठन मस्तिष्क विकसित हो जो प्रिंट की धीमी गहन पद्धति और डिजिटल माध्यम की गति, खोज तथा संचार क्षमता दोनों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके। तंत्रिका विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और नागरिक जीवन को जोड़ते हुए यह पुस्तक गहन पठन को निजी बौद्धिक आदत और लोकतांत्रिक समाज दोनों के लिए आवश्यक मानती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गहन पठन केवल शब्द पहचानना नहीं, अर्थ के कई स्तरों तक पहुंचना है। वुल्फ के अनुसार पढ़ना मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात रूप से तैयार क्षमता नहीं है। मस्तिष्क अभ्यास के माध्यम से दृश्य संकेतों, भाषा, स्मृति और ध्यान को जोड़कर पठन की नई परिपथिकाएं बनाता है। इसलिए जिस माध्यम और गति में हम बार बार पढ़ते हैं वे हमारी पठन शैली को प्रभावित कर सकते हैं। गहन पठन में केवल वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना शामिल नहीं होता। पाठक पहले से मौजूद ज्ञान को सक्रिय करता है, संदर्भ पहचानता है, संकेतों से अनुमान लगाता है, विचारों के बीच समानताएं और विरोध खोजता है तथा लेखक के तर्क की विश्वसनीयता परखता है। इसी प्रक्रिया में आलोचनात्मक सोच, आत्मचिंतन, कल्पना और सहानुभूति विकसित होती है। वुल्फ की चिंता यह नहीं कि स्क्रीन पर पढ़ना स्वभावतः असंभव या हानिकारक है। चिंता यह है कि स्क्रीन आधारित परिवेश अक्सर गति, तात्कालिक प्रतिक्रिया और लगातार बदलाव को पुरस्कृत करता है। जब स्कैन करना और तुरंत अगली सूचना पर जाना सामान्य आदत बन जाए तो जटिल गद्य के साथ ठहरने की संज्ञानात्मक धैर्य क्षमता कम हो सकती है। पुस्तक इस अंतर को नैतिक श्रेष्ठता के रूप में नहीं बल्कि अभ्यास से बनने वाली मानसिक आदत के रूप में समझाती है। इसीलिए गहन पठन की रक्षा का अर्थ पुराने माध्यम का अंध समर्थन नहीं बल्कि उन मानसिक प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय और परिस्थितियां उपलब्ध कराना है। दूसरा, डिजिटल वातावरण की गति, स्किमिंग और ध्यान विभाजन पठन की गुणवत्ता को कैसे बदलते हैं। पुस्तक डिजिटल पठन के साथ जुड़ी कुछ संरचनात्मक प्रवृत्तियों पर ध्यान देती है, जैसे तेजी से सूचना ग्रहण करना, छोटे अंशों में पढ़ना, सूचनाओं के बीच उछलना और निरंतर सूचनाओं का आकर्षण। ये प्रवृत्तियां समाचार खोजने, दिशा पाने या किसी तथ्य तक शीघ्र पहुंचने में उपयोगी है। समस्या तब पैदा होती है जब यही तरीका हर प्रकार के पाठ पर लागू होने लगता है। किसी दार्शनिक तर्क, साहित्यिक रचना या विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण को समझने के लिए पाठक को कई अनुच्छेदों और विचारों को कार्यशील स्मृति में बनाए रखना पड़ता है। उसे अस्पष्टता सहनी होती है और तत्काल निष्कर्ष के बजाय क्रमशः अर्थ बनाना पड़ता है। बार बार बाधित ध्यान इस प्रक्रिया की लागत बढ़ा देता है। वुल्फ यह भी रेखांकित करती है कि पर्याप्त पृष्ठभूमि ज्ञान के बिना पाठक नए विचारों से गहरे संबंध नहीं बना पाता। यदि पढ़ना केवल त्वरित सूचना उपभोग बन जाए तो ज्ञान का आंतरिक भंडार कमजोर रह सकता है और उसी के साथ अनुमान, तुलना तथा स्वतंत्र निर्णय की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। फिर भी उनका निष्कर्ष नियतिवादी नहीं है। मस्तिष्क अनुकूलनशील है, इसलिए आदतें बदली भी जा सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल सुविधा को गहन समझ का विकल्प ना मानकर अलग उद्देश्य वाला उपकरण माना जाए। माध्यम के बजाय पढ़ने के लक्ष्य, गति और एकाग्रता पर सजग नियंत्रण आवश्यक है। तीसरा, द्विभाषी पठन मस्तिष्क का प्रस्ताव, प्रिंट और डिजिटल दक्षताओं के बीच संतुलन। वुल्फ का सबसे रचनात्मक प्रस्ताव द्विभाषी पठन मस्तिष्क है। यह द्विभाषी का अर्थ दो बोली जाने वाली भाषाएं जानना नहीं बल्कि दो पठन परिवेशों में दक्ष होना है। एक ओर प्रिंट या अपेक्षाकृत स्थिर पाठ के साथ धीमे, एकाग्र और विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़ने की क्षमता है, दूसरी ओर डिजिटल संसार में खोज, चयन, स्रोतों की तुलना, त्वरित संचार और अनेक प्रारूपों को समझने की क्षमता है। वुल्फ के लिए लक्ष्य बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना नहीं है क्योंकि भविष्य के सामाजिक, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। लेकिन यदि प्रारंभिक विकास में स्क्रीन का अनुभव भाषा संवाद, कहानी सुनने, खेल, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रिंट आधारित साझा पठन को विस्थापित कर दे तो गहन पठन की नींव कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए पुस्तक उम्र और विकास अवस्था के अनुसार संतुलित परिचय पर बल देती है। छोटे बच्चों के लिए वयस्क के साथ संवादपूर्ण पठन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे केवल शब्द नहीं सीखते बल्कि शब्दों को अनुभव, भावना और संबंधों से जोड़ते हैं। बड़े बच्चों को डिजिटल सामग्री का उपभोक्ता पर नहीं, विवेकपूर्ण मूल्यांकनकर्ता बनना चाहिए। द्विभाषी मॉडल तकनीक को अस्वीकार करने के बजाय पठन की अलग अलग मांगों को पहचानता है। यह शिक्षा के सामने यह व्यावहारिक प्रश्न रखता है कि किस आयु में, किस लक्ष्य के लिए और कितनी मात्रा में कौन सा माध्यम उपयोगी है। चौथा, आलोचनात्मक विवेक और सहानुभूति को लोकतांत्रिक जीवन से जोड़ने वाला तर्क। रीडर, कम होम गहन पठन को केवल परीक्षा, पेशेवर सफलता या साहित्यिक रुचि का विषय नहीं मानती। वुल्फ इसे नागरिक जीवन की क्षमता से जोड़ती है। जटिल सार्वजनिक मुद्दों को समझने के लिए व्यक्ति को लंबे तर्कों का पीछा करना, स्रोतों की विश्वसनीयता परखना, विरोधी दृष्टिकोण को निष्पक्षता से समझना और सरल नारों से आगे बढ़ना पड़ता है। यही प्रक्रियाएं गहन पठन में अभ्यास पाती है। जब सूचनाएं बहुत अधिक हो और उनका प्रवाह तेज हो, तब केवल अधिक जानकारी होना पर्याप्त नहीं होता। व्यक्ति को यह निर्णय भी लेना होता है कि किस जानकारी पर ध्यान दिया जाए, किन दावों के प्रमाण हैं और कौन से संदेश भावनात्मक प्रतिक्रिया उकसाने के लिए बनाए गए हैं। पुस्तक की सहानुभूति संबंधी चिंता भी इसी संदर्भ में है। कथा साहित्य और जटिल जीवन वृत्तांत पाठक को किसी अन्य व्यक्ति के अनुभव, प्रेरणा और दुविधा के भीतर समय बिताने का अवसर देते हैं। यह अनुभव वास्तविक जीवन में सहानुभूति की गारंटी नहीं देता, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण की कल्पना करने का अभ्यास अवश्य दे सकता है। वुल्फ के तर्क में आलोचनात्मक विश्लेषण और सहानुभूति विरोधी नहीं, पूरक क्षमताएं हैं। एक व्यक्ति को दावों की कठोर जांच करनी चाहिए और साथ ही उन लोगों की मानव जटिलता भी समझनी चाहिए जिनसे वह असहमत है। इस प्रकार पुस्तक डिजिटल पठन की बहस को व्यक्तिगत आदत से आगे सार्वजनिक संवाद की गुणवत्ता तक ले जाती है। अंत में, वयस्क पाठक की बदलती आदतें और पुस्तक की सावधानीपूर्ण सीमित व्यावहारिक दिशा। वुल्फ की चर्चा का बड़ा भाग बच्चों के विकास और शिक्षा पर केंद्रित है, लेकिन वह स्वयं भी स्वीकार करती है कि स्क्रीन निर्भरता गहन पठन में प्रशिक्षित वयस्कों को प्रभावित कर सकती है। यह आत्मस्वीकृति पुस्तक को केवल अगली पीढ़ी पर चिंता जताने वाली रचना बनने से बचाती है। वयस्क पाठक अपने भीतर यह बदलाव पहचान सकते हैं कि वे लंबे अध्यायों में जल्दी अधीर हो जाते हैं, कठिन वाक्यों को दोबारा पढ़ने के बजाय छोड़ देते हैं, या किसी विचार के साथ बैठने के बजाय तुरंत सारांश और प्रतिक्रिया खोजने लगते हैं। पुस्तक का निहित व्यावहारिक संदेश यह है कि गहन पठन कोई स्थायी उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है। उपन्यास, इतिहास, दर्शन या अन्य अवधारणात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण पुस्तकों के लिए बिना बाधा का समय रखना इस अभ्यास को सहारा दे सकता है। पढ़ते समय प्रश्न लिखना, तर्क का सार अपने शब्दों में बनाना और अलग दृष्टिकोण वाले लेखन को पढ़ना भी निष्क्रिय स्किमिंग के स्थान पर सक्रिय संलग्नता बढ़ा सकता है। फिर भी यह मानना उचित होगा कि पुस्तक वयस्कों के लिए विस्तृत चरणबद्ध कार्यक्रम नहीं देती। कुछ पाठकों को इसके समाधान अपेक्षाकृत सामान्य लग सकते हैं। इसकी शक्ति तैयार नुस्खों में नहीं, बल्कि समस्या की संज्ञानात्मक जड़ों को स्पष्ट करने में है। वह पाठक को अपनी माध्यम आदतों का निरीक्षण करने और सुविधा, गति तथा समझ के बीच अपने संतुलन पर विचार करने का ठोस आधार देती है। निष्कर्ष में, रीडर, कम होम उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो महसूस करते हैं कि निरंतर स्क्रीन उपयोग ने उनके ध्यान, धैर्य या लंबे पाठ के साथ संबंध को बदला है। यह शिक्षकों, अभिभावकों, पुस्तकालय कर्मियों, शिक्षा नीति से जुड़े लोगों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि पुस्तक पठन को केवल कौशल नहीं, विकासशील संज्ञानात्मक व्यवस्था के रूप में देखती है। तकनीक पर लिखी अनेक पुस्तकों में या तो डिजिटल माध्यम के लाभों का उत्सव होता है या उसके खतरों की तीखी चेतावनी। वुल्फ की अलग पहचान यह है कि वह तंत्रिका विज्ञान, विकासात्मक मनोभाषा विज्ञान, साहित्य और शिक्षा को जोड़कर माध्यम के प्रभाव की अधिक सूक्ष्म तस्वीर बनाती है। उनका लक्ष्य स्क्रीन को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह समझना है कि अलग पठन आदतें मस्तिष्क में किन क्षमताओं को अधिक या कम सक्रिय कर सकती है। पुस्तक का पत्रात्मक रूप भी इसके चिंतनशील स्वर को सहारा देता है। हालांकि वैज्ञानिक हिस्से कुछ पाठकों को चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं और वयस्कों के लिए अधिक विस्तृत उपायों की अपेक्षा रह सकती है, फिर भी इसका प्रमुख बौद्धिक लाभ यह है कि यह पाठक को दक्षता और गहराई के अंतर पर विचार करने को कहती है। त्वरित खोज, सारांश और डिजिटल संचार उपयोगी है, पर वे जटिल अर्थ निर्माण का पूरा विकल्प नहीं है। पुस्तक का द्विभाषी पठन मस्तिष्क वाला विचार आज के लिए व्यावहारिक ढांचा देता है, जिसमें प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों की शक्तियों का उपयोग हो। लेकिन आलोचनात्मक सोच, चिंतन और सहानुभूति की धीमी प्रक्रियाएं सुरक्षित रहे। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मारियान वुल्फ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।